नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं आशुतोष मिश्र। मुख्य समाचार। भारत ने विश्व मानचित्र पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया, कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख सहित संप्रभु क्षेत्रों को सटीक रूप से दर्शाया जाना चाहिए। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच ईरान अमेरिका तनाव बढ़ा। बलूचिस्तान की जहरी तहसील में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा सैन्य अभियान, गिरफ्तारियों और हवाई हमलों की खबरों के बीच कर्फ्यू जारी। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट से हवाई यात्रा बाधित, 1 लाख से अधिक यात्री फंसे। और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र से जुड़ी प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है। उन्होंने कहा कि भारत के संप्रभु क्षेत्र, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी शामिल हैं, उन्हें भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार ही दिखाया जाना चाहिए। किसी भी गलत या भ्रामक चित्रण को भारत स्वीकार नहीं करेगा। रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट और अडिग है। उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 सितंबर को समान क्षेत्रफल वाले मानचित्रों को बढ़ावा देने से जुड़ा प्रस्ताव पारित किया। इसका उद्देश्य दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों, खासकर अफ्रीका को मानचित्रों पर उनके वास्तविक क्षेत्रफल के अनुपात में दिखाना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह प्रस्ताव किसी खास मानचित्र, प्रक्षेपण या किसी देश की सीमा के चित्रण का समर्थन नहीं करता। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि उनकी एरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमरीकी विमानवाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। IRGC ने दावा किया कि इन पोतों ने ईरान की नौसैनिक नाकाबंदी में हिस्सा लिया था। उसने चेतावनी दी कि अगर अमरीका की आक्रामक कार्रवाई जारी रही तो ईरान की सशस्त्र सेनाएं कड़ा जवाब देंगी। यह तनाव IRGC की नौसेना द्वारा रात में किए गए हमलों के बाद और बढ़ गया। IRGC ने कहा कि उसने हॉर्मूज जल डमरू मध्य में 3 तेल टैंकरों और अन्य स्थानों पर अमेरिका से जुड़े 3 जहाजों को निशाना बनाया। ईरान ने इन हमलों को दिन में अमरीका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया। हॉर्मूज जल डमरू मध्य के आसपास अमरीका ईरान संघर्ष में इस सप्ताह एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों पक्षों ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य और उसके आसपास जहाजों पर हमले किए हैं। कल के ताजा घटनाक्रम में अमरीका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि उसने ईरान के 3 तेल टैंकरों को निष्क्रिय कर दिया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने भी दावा किया कि उसकी नौसेना ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य के संरक्षित क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रही रिमोट से संचालित अमरीका की एक नाव को निशाना बनाया है। बलूचिस्तान के खुजदार जिले की जहरी तहसील में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के सैन्य अभियान के कारण प्रतिबंधों को बढ़ा दिया गया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि अभियान के दौरान लोगों को हिरासत में लिया गया और कुछ लोग लापता हुए तथा हवाई हमला भी किया। द बलूचिस्तान पोस्ट के अनुसार कथित अभियान के दौरान सुन्नी इलाके से करीब 25 लोगों को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने हिरासत में लिया। बाद में उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। जहरी के अन्य इलाकों में भी इसी तरीके के अभियान चलाए जाने की खबर है। सूत्रों के अनुसार सुन्नी इलाके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के कथित हमले में एक महिला की मौत हो गई और 2 लोग घायल हुए हैं। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण 8 हवाई अड्डों पर परिचालन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। इससे 1.5 लाख से अधिक यात्री फंस गए हैं। परिवहन मंत्री डूडी पूर्वा गांधी ने बताया कि अब तक 712 उड़ानें प्रभावित हुई हैं। जकार्ता के सेकार्नो हट्टा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अनाक क्राकाटाऊ ज्वालामुखी से निकली राख के हवाई क्षेत्र में पाए जाने के बाद सबसे पहले परिचालन निलंबित किया। ज्वालामुखी की राख जावा के ऊपर 20,000 फीट और सुमात्रा की ओर 50,000 फीट तक की ऊंचाई तक पहुंच गई। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। मिस्र की एक अदालत ने टीवी एंकर सारा खलीफा समेत 12 लोगों को ड्रग्स तस्करी के मामले में मौत की सजा सुनाई है। सभी दोषियों को फांसी दिए जाने का आदेश दिया गया है। अदालत ने माना कि आरोपी एक आपराधिक गिरोह चला रहे थे जो मादक पदार्थ के निर्माण और बिक्री के लिए कच्चा माल आयात करता था। एक रिपोर्ट।
आरोपियों के पास अवैध हथियार होने की बात भी सामने आई है। सारा खलीफा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि अधिकारियों ने उन्हें नशीले पदार्थों के साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए मजबूर किया था और उन्होंने पहली बार तभी उन पदार्थों को देखा। मिस्र के कानून के मुताबिक मौत की सजा को अंतिम रूप देने से पहले ग्रैंड मुफ्ती से धार्मिक मंजूरी लेना अनिवार्य है। यह मंजूरी मिलने के बाद सजा को अंतिम रूप दिया गया है। हालांकि दोषियों के पास अभी भी फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार है। जांच के दौरान अभियोजन पक्ष ने बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सबूत जुटाए। करीब 20 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इसके अलावा 750 किलोग्राम से ज्यादा मादक पदार्थ और उन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे रसायन भी जब्त किए गए। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल पहले भी मिस्र में बड़ी संख्या में मौत की सजाओं को लेकर चिंता जताता रहा है। संगठन का कहना है कि मिस्र में ड्रग्स तस्करी जैसे अपराधों में भी अक्सर मौत की सजा दी जाती है, जबकि इनमें जानबूझकर हत्या शामिल नहीं होती। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
ओपेक प्लस के 7 प्रमुख देशों ने अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान के प्रतिनिधियों ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वैश्विक बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की।
ये फैसला ऐसे समय में हुआ है जब वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बनी हुई है। ओपेक प्लस ने सितंबर में कच्चे तेल के उत्पादन में प्रतिदिन 188,000 बैरल की वृद्धि कर वर्ष 2023 की स्वैच्छिक कटौती को समाप्त कर दिया है। ये बैठक ईरान से जुड़े संघर्ष और हॉर्मुज जलडमरूमध के आसपास व्यवधानों सहित तेल निर्यात में जारी रुकावटों की पृष्ठभूमि में हुई। इन व्यवधानों के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर ओपेक प्लस के उत्पादन संबंधी फैसलों का असर सीमित रहा है। संयुक्त अरब अमीरात इस वर्ष मई में राष्ट्रीय हितों का हवाला देते हुए ओपेक प्लस से अलग हो गया था। उसका कहना था कि वह बाजार की तत्काल जरूरतों को पूरा करने में अधिक प्रभावी योगदान देना चाहता है। ओपेक प्लस की अगली बैठक अक्टूबर में होने की उम्मीद है, जिसमें बाजार की स्थिति और तेल उत्पादन स्तर की समीक्षा की जाएगी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इस महीने की 12 और 13 तारीख को भारत मंडपम में आयोजित होगा। सम्मेलन की सुरक्षा तैयारियों के तहत आज सुबह दिल्ली पुलिस ने मोटर काफिले की रिहर्सल की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। चीन के चियांगशी प्रांत में मूसलाधार बारिश के बाद भूस्खलन हुआ है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 लोग अब भी लापता हैं। तूफान सॉडल से कई दिनों की मूसलाधार बारिश के कारण यह आपदा आई। बचाव कर्मियों ने आज एक ढहे हुए घर से लापता व्यक्ति का एक शव बरामद किया। 2 अन्य लोगों को बचाया गया है, उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। चीन के शेंजन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू को हराया। इस वर्ष यह उनका दूसरा सुपर 750 और कुल मिलाकर 4th खिताब है। सात्विक चिराग की जोड़ी इस टूर्नामेंट में 2023 और 2025 में उप विजेता रही थी। भारत अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने विश्व मानचित्र पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख सहित संप्रभु क्षेत्रों को सटीक रूप से दर्शाया जाना चाहिए। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच ईरान अमरीका का तनाव बढ़ा। बलूचिस्तान की जहरी तहसील में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा सैन्य अभियान। गिरफ्तारियों और हवाई हमलों की खबरों के बीच कर्फ्यू जारी। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट से हवाई यात्रा बाधित, 1,00,000 से अधिक यात्री फंसे। और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।